ओम शांति। एक बार एक अनपढ़ और गवार व्यक्ति था जिसके पास एक गधा था। उस गधे को लेकर जब वो व्यक्ति जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वास्तव में वो पत्थर एक बहुमूल्य हीरा था, परंतु उसने सोचा कोई अच्छा चमकीला पत्थर मात्र है और उसने उठा लिया और एक रस्सी से अपने गधे के गले में बांध दिया और गधा और वो चलने लगे। चलते चलते थोड़ी देर बाद एक जोहरी वहां से जा रहा था और जिसने देखते ही पहचान लिया कि ये तो एक अति मूल्यवान हीरा है, परंतु जिस तरह वो बांधा गया था गले पर गधे के, उसने सोचा, जोहरी ने सोचा कि लगता है ये व्यक्ति बहुत मूर्ख है, तब तो ऐसे बांध कर लेके जा रहा है। तो जोहरी उस व्यक्ति से पूछता है कि ये जो पत्थर है इसका क्या भाव है। जो व्यक्ति होता है वो सोचता है ये तो पत्थर है, इसका भाव क्यों मांग रहा है, पर शायद ये महत्वपूर्ण होगा, इसके लिए वो कहता है 1 रुपया। तो जोहरी कहता है इतने साधारण से पत्थर के 1 रुपया, मैं 4 आने दे सकता हूं बस, इससे ज्यादा नहीं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी सोचता है कि मैं भी क्यों अपने, जरूर इस पत्थर में कुछ तो है। वो कहता है नहीं, 8 आने से कम नहीं दूंगा। तो वो जो जोहरी होता है वो सोचता है थोड़ी देर के बाद मांगता हूं, अभी थोड़ा आगे चला जाता हूं। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, जा, और वो आगे चला जाता है। उसी वक्त एक दूसरा जोहरी वहां पर आता है और वो देखता है उस हीरे को और वो भी इसी तरह चालाक होता है और वो भी पूछता है इस पत्थर का क्या मोल है। तो वो व्यक्ति कहता है 1 रुपया। तो कहता है लो 1 रुपया और दे दो, और लेके चला जाता है। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो लौटकर आकर कहता है कि कहां है वो पत्थर। वो कहता है मैंने तो बेच दिया। तो जोहरी कहता है अरे मूर्ख, क्या इतना भी नहीं जानते, वो पत्थर नहीं था, हीरा था। तुमने इतने कीमती मूल्यवान हीरे को 1 रुपये में बेच दिया। वो मूर्ख व्यक्ति कहता है मेरे से अधिक मूर्ख तो तुम हो, मैं तो नहीं जानता था, परंतु तुम तो जानते थे, जानकर भी तुमने हीरे को गवा दिया। मुझे तो कोई दुख नहीं है, परंतु मेरे से भी अधिक मूर्ख तो तुम हो। हमारे हाथ में भी ऐसे कितने ही बहुमूल्य हीरे हैं। एक एक महावाक्य हीरा है, लाखों का है। एक एक श्रीमत इतनी मूल्यवान है कि संसार के किसी शास्त्रों में वो नहीं। एक एक बात जो भगवान ने कही है, क्या हम भी किसी भी कारण से है संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म निरंतर निरंतरण, तो यह जो आत्म नियंत्रण है, कंट्रोलिंग पावर ऑफ द माइंड, और साथ ही साथ रूलिंग पावर, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। अरेबियन नाइट्स में दिखाते हैं अलादीन, एक अफ्रीकी जादूगर आता है भेष बदलकर और उसको उस गुफा में भेजता है, क्योंकि केवल अलादीन ही वो चिराग ले सकता था, परंतु अलादीन बच जाता है। कहानी सभी को पता है, वो चिराग ये संयम की यदि शक्ति है, और इस चिराग को घिसना अर्थात इस संयम को कार्य में लगाना, तो एक जिन प्रकट होगा, और वो जो जिन है रूलिंग पावर का, जिससे हम शासन कर सकेंगे स्व पर, स्वयं के संस्कारों पर, मन पर, बुद्धि पर, प्रकृति पर, माया पर, और भविष्य में संपूर्ण विश्व पर। तो मूल आधार वह चिराग है। इससे पहले कि हम ये देखें कि मन को नियंत्रण में कैसे लाए, इस मन को थोड़ा समझना होगा। चंचलम ही मनम कृष्ण, गीता में अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण मैं क्या करूं, मन तो इतना चंचल है। जैसे ये वायु है, वायु को वश में किया जा सकता है, परंतु मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। कैसे मैं इस मन को वश में करूं? द्वापर से अब तक योगी, तपस्वी, महात्मा, त्यागी, सन्यासी, उदासी, हर धर्म के साधक सभी ने इस मन को साधने का प्रयत्न किया है, परंतु मन बार बार धोखा देता है। इस मन को ही समझने का प्रयत्न किया है साइकोलॉजिस्ट, मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, सारा आधार उनका मन है, हाउ द माइंड वर्क्स। स्वामी विवेकानंद ने कही बहुत सुंदर उपमा की है कि मनुष्य का मन बंदर की तरह है। बंदर अर्थात पहले से ही चंचल है, कभी एक जगह नहीं टिकता। ऐसे बंदर को एक बिच्छू ने काट दिया, और फिर किसी ने आकर इस बंदर को शराब पिला दी, और फिर एक भूत प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। ये है मनुष्य का मन। अब कैसे वश में करोगे इसको? विकारों ने, विकारों के बिच्छू ने उसे काटा है, इच्छाओं की शराब, विकर्मों का वो प्रेतात्मा जैसे उसमें प्रवेश है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंट्रोल द माइंड। असंख्य उपमाएं संसार में दी गई है, असंख्य उपाय भी बताए गए हैं कि कैसे इस मन को वश में किया जाए, कैसे मन को जीत लिया जाए, नियंत्रण में लाया जाए, अंकुश लगाया जाए इसकी बहिर्गामी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को। दो नियम हैं, वो हम देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे कंट्रोलिंग पावर की। मन का एक नियम ऐसा है कि उसको यदि कह दो कि ये नहीं करना है, तो क्या करता है? वो वही करता है। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट बेयर फिनोमिनन, साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसका नाम है सफेद भालू। विदेश में प्रयोग किए गए, लोगों को बिठाया गया और उनसे कहा गया कि अगले एक घंटे तक हर एक चीज के बारे में सोचना, सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना। उन लोगों ने कहा, सफेद भालू, हमने तो भालू ही नहीं देखा कभी जीवन में, खाली चित्र देखा है और भालू हमेशा काला दिखाया है। तो उनको यह काम दिया जाता है कि एक घंटे के लिए सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है। एक घंटे के बाद पूछा गया तो हर एक के मन में भालू ही कूद रहा था। तब तक जो मन को कहा कहो कि यह नहीं करना है, वही वो करता है। सिगमंड फ्राइड हुआ है पाश्चात्य जगत में फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। उसके जीवन में उल्लेख है, वो और उसकी पत्नी एक बार छोटे बच्चे के साथ बगीचे में जाते हैं, दिन भर घूमते हैं, शाम होती है, जब घर जाने का समय आता है तो पाते हैं बच्चा है ही नहीं। सब जगह ढूंढते हैं, बच्चा नहीं मिलता है। सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी से कहता है, क्या तुमने उसे कहीं पर न जाने के लिए कहा था? वो कहती है, हां, वो फवारे के पास उसको नहीं जाने के लिए कहा था। सिगमंड फ्राइड कहता है, वहीं होगा वो, जाओ और उसे ले आओ। तो वो जाती है तो बच्चा बैठा रहता है पानी में पैर डालते हुए, और उसे वो लेके आती है। तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुमने ये कैसे जाना? वो कहता है कि 30 साल से मैं मनुष्य के मन का ही तो अध्ययन कर रहा हूं, सारी उम्र इसी में तो गई है, यही तो मनुष्य के मन की प्रवृत्ति है, जो उसे कहो नहीं तो बस वही क्या है, वही उत्सुकता, वही उत्कंठा जागृत होती है। सीधा यदि कह दिया जाए तो काम महाशत्रु है, उत्कंठता जागती है, क्या है। उसका एक दूसरा भी नियम है मन का, इस पहले नियम को आयरनिक प्रोसेस थियरी कहा जाता है साइकोलॉजी में, आयरनिक प्रोसेस थियरी। दूसरा उसका नियम है रूल ऑफ रिपीटिशन, पुनरुक्ति। बार 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 कोई चीज यदि करते रहो तो वो धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। पाश्चात्य जगत में विलियम जेम्स है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उसने अपने जीवन का संस्मरण लिखा है कि एक बार मैं और मेरा दोस्त एक चाय की टपरी पर बैठे थे और वहां से एक व्यक्ति आ रहा था जिसके सिर पर बहुत सारा बोझ था, सूटकेस थी, बैग थी, लगेज था। और विलियम जेम्स लिखता है, मुझे पता था ये व्यक्ति जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, 30-40 साल तक उसने आर्मी में काम किया है। तो वो बड़ी मुश्किल से उस वजन को ढोता हुआ वहां से आता है। ये दोनों मित्र जवान थे, बैठे थे वहां पर। विलियम जेम्स ने कहा कि जोर से वो चिल्लाता है, अटेंशन। उस व्यक्ति को नहीं कहा, ऐसे ही चिल्लाया। जो व्यक्ति उधर से आ रहा था जिसके सिर पर बहुत सारा सामान था, वो एकदम से अटेंशन हो जाता है, सारा सामान गिर जाता है। तो उसे घुसता आता है और वो उस विलियम जेम्स के पास आकर कहता है, क्या ये अटेंशन तुमने कहा? तो वो विलियम जेम्स कहता है, हां, क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है या गुनाह है? वो कहता है, नहीं, मेरा सारा सामान गिर गया। तो वो व्यक्ति कहता है कि अरे भाई, मैं 40 साल तक आर्मी में था, जैसे ही अटेंशन, यदि मर गया और कोई अटेंशन कह दे तो शायद कब्र से भी उठ के खड़ा हो जाऊं अटेंशन में, इतना वो संस्कार पक्का हो गया है। कोई भी चीज, कोई भी बात बार 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 रिपीट जब की जाती है तब वो हमारे वश में नहीं रहती है, फिर देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और कोई भी चीज जब सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में चली गई तो अवचेतन मन स्वतः ही कार्य करने लगता है, वो विकार, विकर्म, विकल्प भी हो सकते हैं, तो सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चिंतन, महान स्वप्न, महान दृश्य, महान विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेंशुअल फैंटेसीज। लेट अस जगत में युवकों को जो बहुत तंग करता है सेंशुअल फैंटेसीज, देखते हैं कुछ कुछ और स्वप्न देखते हैं, वही बुद्धि में घूमते रहता है और उसी की आदत, और वो फिर स्वतः ही कार्य करता है। ये दो नियमों को समझना है। मन के साथ यदि जबरदस्ती की गई, उसे बताया गया कि ये बिल्कुल नहीं करना है, वो वही करना चाहेगा। जबरदस्ती भूखा रखो मन को, स्वप्न में रात में भोजन ही भोजन दिखता है। किसी भी तरह की जबरदस्ती इस मन के साथ उपद्रव को जन्म देगी। तो कंट्रोलिंग पावर जैसे कि एक चिराग है, इस चिराग को घिसो, नियंत्रण की शक्ति। तो ये घिसना अर्थात कार्य में लगाना। तो आज की क्लास में हम ऐसी 10 बातें देखेंगे जिन्हें हमें कंट्रोल करना है, अपने वश में लाना है। और यदि हमने ये 10 बातों को अपने वश में कर लिया तो संपूर्णता की जो मंजिल है वो बहुत करीब हो जाएगी। उसमें कुछ इंद्रिय है, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ और बातें हैं। ये चिराग जो है संयम का, हर एक के पास है, हर एक के पास श्रेष्ठ शक्ति बाबा ने दी हुई है। केवल इसे घिसने की आवश्यकता है तो ही वो जिन प्रकट होगा, रूल करने का, शासन करने का। तो ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना है, वश करना है। स्थूल से चालू करेंगे, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म, कोई अति सूक्ष्म, कोई अति स्थूल, सारी चीजें उसमें आएगी। सबसे पहला आंख, सबसे पहली आंख। अभी मुरली चली थी त्याग पर पिछले संडे, सुनिए सभी ने, शेर आया, बिल्ली आई, कुत्ता आया, एक एक कर्मेंद्रिया जाल है, रूहानी बेहोशी, बेअर्थ की बातें करते रहते हैं। फिर है छोटी सी परंतु जाल है बहुत बड़ा। ये आंखें है बहुत छोटी, पर जो कि एक बार देख लिया कुछ तो उसका इंप्रेशन गहरे तक पड़ जाता है। और यदि जो देखी हुई चीज है वो चलती फिरती है, उसमें आवाज है, ध्वनि है, 3D, 3D वाली है, फिर तो मुश्किल है भूलना। यदि किसी को कहो कि ये किताब तुमने 10 साल पहले पढ़ी थी, क्या है उसमें, उसे याद नहीं है। परंतु यदि उसे कहो कि ये मूवी जो तुमने 10 साल पहले देखी थी, उसको डायलॉग भी याद है। क्यों? क्यों? बहुत सारी चीजें सुनाई भी दे रहा है, वो चल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो माइंड ने उसको पूरा के पूरा प्रिंट कर लिया है अवचेतन मन पर। सबकॉन्शियस का जो बेड है अवचेतन का, अंतर मन में छप चुका है वो। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, बीच में एक बैरियर है प्री कॉन्शियस। यहां से वहां जाना बड़ा मुश्किल है, परंतु एक बार चला जाए तो वो परमानेंट है। और ये जो बैरियर है बीच का, 2 समय खुलता है, उठते ही सुबह 5-10 मिनट और रात को सोते समय। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है स्वयं को संकल्प देने का, ऑटो सजेशन, हिप्नोसिस, सुबह का उठते ही पहला संकल्प, जैसा होगा उसी अनुसार सारी दिनचर्या होगी। रात को सोते समय किन संकल्पों के साथ सो रहे, दुख के, निराशा के, परमात्मा प्रेम के, किन संकल्पों, विकारों के, आसक्ति के, लगाव के, दैहिक आकर्षण के, आसक्ति घृणा के, नफरत के, किन संकल्पों के साथ। वह संकल्प सीधा, क्योंकि हम सो रहे हैं, सोते सोते वो संकल्प कर रहे हैं और धीरे 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 वो संकल्प अंदर चला जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम योग करने का जो है वो है खटिया पे लेटने के बाद। उसके बाद, उसके पहले बाबा को याद करना वो दूसरी बात, परंतु एक बार लेट गए तब ये संकल्प करना कि मैं आत्मा हूं। उस योग की अवस्था में जरूरत पड़े तो कमेंट्री सुनते सुनते सो जाना, ताकि वो कमेंट्री सीधा सबकॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। दिन भर में कितना भी समझाओ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परंतु कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होता है कि कोई भी संकल्प वहां तक पहुंचने नहीं देता है। और सुबह के समय ये बैरियर थोड़ा हल्का या कम होता है, तो सुबह का समय जो भी संकल्प दे दोगे, चाहे अब तक का जीवन कैसा भी रहा, परंतु आज नया दिन है, आज नया उमंग, नया उत्साह, नई चेतना, नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता, जीवन में कितनी ही समस्या है परंतु आज का दिन नया है, ये संकल्प, तो सारा दिन भी वैसा ही होगा। अगर उठते ही निराशा का संकल्प है, उठते ही यही संकल्प कि आज भी अमृत वेला मिस, आज भी लेट, तो दिन भी वैसा ही होगा, क्योंकि वो यू आर फीडिंग दैट थॉट इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहली बात हम कर रहे थे, आंखें क्या ये देख रही है, एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म। स्थूल में है यदि इसे देह देखने का अभ्यास है, यदि इसे देह ही सुंदर दिखता है तो बहुत बड़ा भ्रम है। क्या वास्तव में यह देह इतना सुंदर है या भ्रम है? यदि वास्तव में देह सुंदर लग रहा है तो जाओ और जाकर देखो सरकारी अस्पतालों में, जनरल वार्ड में पड़े उन पेशेंट्स को, कहां है सौंदर्य? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्म में दुख है, जरा में दुख है, व्याधि हर चीज में दुख है, अनित्यम असुखम लोकम। परंतु मीडिया, उपन्यासकार, साहित्य सबने इस देह का एक भ्रामक चित्र पेश किया है निहित स्वार्थ के लिए। अ बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इससे अतिरिक्त यह देह कुछ नहीं। इस चमड़ी में कैसा सौंदर्य! एक अव्यक्त मुरली है 71, बाबा ने कहा है, यह देह साफ है, इन्वर्टेड कॉमा, सांप में विष होता है, यदि संकल्प से या नजर से भी इस देह को टच करते हो तो ये किसे याद है मुरली? तो ये क्या है, क्या है, क्या है? यदि संकल्प से, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, संकल्प से और नजर से इस देह को टच करते हो तो ये परमात्मा महावाक्य है, महा 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 पाप है। 3 times इसके लिए हे कुमार और हे कुमारियो, अव्यक्त महावाक्य, मस्तक पर बैठे मणि को देखो और प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम इस मणि को छोड़कर और कुछ नहीं देखेंगे। सारे विकार यहां से प्रवेश करते हैं। दूसरा है अवगुण देखना। कई सारी मुरलियां इस पर चली है, भगवान का एक एक बच्चा जिसे भगवान ने चुना है वो साधारण नहीं हो सकता। हमने उसे चुना या उसने हमें चुना? किसने किसको चुना? एक एक गांव से एक एक निकाला है उसने। बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मैंने एक एक को तुमको चुना है। माय शिप्स विल हियर माय वॉइस, आई एम अ गुड शेफर्ड। इस झाड़ का एक एक पत्ता जो है वो भगवान ने स्वयं चुना है। हम में कहां योग्यता थी, हम में क्या था, कुछ भी तो नहीं। उसे जानने की भी योग्यता नहीं थी, उसी ने हमको जाना, उसी ने हमको चुना। साकार मुरली के महावाक्य है, तुम डूब चुके थे भक्ति में, तुम्हारा एक बाल पकड़कर मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। एक ही बाल था केवल, उसको पकड़कर मैंने बाहर निकाला है। आज भी प्रश्न है ना, तलाश करता है भगवान। तो ये आंखें क्या देख रही है, क्या ये देह अगर उसे आकर्षित कर रहा है तो देह का वास्तविक रूप क्या है उसको देखो। हड्डी मांस मस मल और मूत्र से भरा यह देह, यही इसका सौंदर्य है। क्षणिक ब्यूटी इज बट स्किन डिप, चमड़ी निकालो कहां सौंदर्य है। इसलिए सबसे पहला नियंत्रण है आंखें, क्या हम देख रहे हैं। तथा कथित धार्मिक सीरियल, तथा कथित टीवी और मूवीज में दिखाने वाली वो जो अध्यात्म के नाम पर दिखाया जाता है, परंतु वो जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो एक्टर और एक्ट्रेस, उसका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है, क्या वो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, फिल्मों में किस लिए काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे आदर्श है, क्या उनसे हमें नैतिकता सीखनी है, जो अनीति में डूबे हुए हैं, गर्त में डूबे हैं विकारों के। एक एक का जीवन जो बाहर दिख रहा है ग्लैमरस, अंदर में उतना ही अवसाद, उतना ही फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। क्या वो हमारे रोल मॉडल है, नहीं। ये आंखें क्या देख रही है, सबसे पहला नियंत्रण इन आंखों का है। यदि आंखें इस तरह की कोई भी बातें देखने में लगी हुई है, फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप इट, उसको समझाओ, उससे बात करो आंखों से। विदेश का एक भाई था और बहुत अच्छी, जिसने बहुत सेवाएं भी की थी, और अचानक एक दिन उसका रस खत्म हो गया, मुरली में, ज्ञान में, योग में आना कम हो गया। बड़ी बहनों ने पूछा क्या हुआ, नहीं बताया, कई बार पूछा नहीं बताया। एक बार उसके साथ एक बहन को बिठाया काउंसिलिंग के लिए, तब उसने बताया कि उसको रात में इंटरनेट पर यूट्यूब देखने की आदत पड़ गई है, और जो नहीं देखना है वह देखते रहा, कभी एक बज जाए कभी दो बज जाए, और जैसे जैसे रस उसमें गया वैसे वैसे रस ज्ञान में स्वतः ही कम हो गया। कुछ किया नहीं कम होने के लिए, स्वतः ही। इसके लिए आंखें। दूसरा कान, क्या सुन रहे हैं कान से, किसी की निंदा, किसी की ग्लानी, किसी का अपमान, क्या सुनने से मजा आता है। मनुष्य का यह भी एक स्वभाव है कि यदि दो व्यक्ति रास्ते पर लड़ रहे हैं और हम गाड़ी से जा रहे तो गाड़ी रोक के देखता है क्या हो रहा है लड़ाई, और अगर दोनों में मैत्री हो जाए तो बड़ा दुख होता है। एक्साइटमेंट इतना था, क्या होगा आगे, कौन जीतेगा, वाद विवाद हो रहा है, और दोनों अगर मित्र बन जाए तो एक अज्ञात सा दुख घेर लेता है। इसके लिए थोड़ी रुके थे, कुछ तो होना चाहिए था। इन कानों को ये सब सुनने में बहुत मजा आता है। निंदा, निंदा सुख, क्या हम सुन रहे हैं, कौन से गीत सुन रहे हैं, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं। अश्लीलता का प्रवेश का ये दूसरा द्वार है। आंखें तुमको मिली है ताकि बाप को देखो, अव्यक्त महावाक्य है। कान तुमको मिले हैं क्योंकि ताकि उसके महावाक्य सुनो। और कोई कार्य नहीं है इन दोनों का। तीसरा मुख, जिसकी चर्चा हमने सुबह की थी। चौथी टांग भागती है, कुछ ना कुछ उसे बोलना ही है, न बोले तो बेचैनी होती है। जन्म जन्म की उसे आदत है बोलने की। क्या इस मुख को रोका जा सकता है? और जिस जिसने इस जीवन में मौन का अभ्यास किया होगा, एक दिन भी, 24 घंटा भी, वो जानते होंगे उसमें कितनी शक्ति है, कितना बल है। सारी जैसे अनंत शक्तियां जागृत हो जाती है जैसे ही मुख मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। चौथा टेस्ट, स्वाद। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वाद के अधीन हो नहीं सकता। योगी अर्थात संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत, एक एक कर्मेंद्रिया शिथिल हो गई है, आकर्षण रस कम हुआ है। जिनको बहुत सारी चीजें खानी है, ओवर ईटिंग करना है और बहुत अच्छा लगता है, क्या वो कभी योगी बन सकते हैं? एक ही इंद्रिय, शास्त्रों में कहीं लिखा है, यदि केवल टेस्ट को कंट्रोल कर लिया जाए, केवल और केवल टेस्ट, तो 95% बाकी इंद्रियां स्वतः ही शांत हो जाएगी। और जहां रसेंद्रिय ही वश में नहीं, वहां जनेंद्रिय वश में कैसे हो सकती है? तो चेक करना है स्वयं के टेस्ट को, स्वयं के स्वाद को। ये संयम संपूर्ण देह को शांत कर देगा। इसमें जो उत्तेजना भरी है, एक्साइटमेंट, एजिटेशन, उद्वेग, आवेग, अर्जेस, सेक्सुअल एंड सेंशुअल टेंडेंसीज शांत हो जाएगी। मन जो देह की ओर आकर्षित होता है, यह देह मिट्टी अनुभव होगी। वैराग की एक परिभाषा है, वैराग अर्थात यह संसार असार और देह मिट्टी। जब इसका प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन में आ जाए कि यह संसार जो कुछ दिखाई दे रहा है संपूर्ण असार है, और यह जो देह है यह देह कुछ नहीं बल्कि मिट्टी है, अर्थात वैराग्य उदय हुआ है। अगला, यदि हम अनियंत्रित है, योगी जीवन में सुबह भी कहा था भोजन और नींद, दो चीजों को कंट्रोल करना है। अगला है स्लीप, नींद। कितना हम सो रहे हैं, कैसी हमारी निद्रा है, हर एक की अलग अलग हो सकती है अपने शरीर की प्रकृति अनुसार। परंतु एक नियम नींद का ऐसे भी है, उसको जितना बढ़ाना चाहो वो बढ़ सकती है, जितनी कम करनी चाहो कम की जा सकती है। इस देश के प्रधानमंत्री कितना घंटे सोते हैं? 4। कैसे? इस शरीर को हम जैसा चलाना चाहे वैसा हम चला सकते हैं। देह के दास से देह के मालिक बन गए, लास्ट संडे के मुरली के महावाक्य। देह के दास से तुम अब देह के मालिक बन चुके हो। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, यह समान है। ना अति ऊंचम ना अति नीचम, वह योगी नहीं बन सकता जो बहुत सोता है और जो बहुत कम सोता है या न सोता है। अति सर्वत्र वर्जते, स्वयं निर्धारण करना है कि मुझे कितना सोना है। जिनकी नींद कम होती है वो फिर अपनी नींद को अमृत वेला मुरली क्लास या ज्ञान योग की क्लास में पूरी करते हैं। सार्वजनिक समस्याएं नींद की, भयंकर नींद, मुरली चालू होते ही नींद का प्रकोप। एक भाई ने हमको अपनी डायरी दिखाई थी जिसमें मुरली लिखते हैं, तो वो गोल 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 था पूरा। हमने कहा ये क्या है, उसने कहा ये नींद थी इतनी भयंकर कि पॉइंट्स तो लिखी पर बाद में देख रहा हूं तो ये तो गोल 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 है, केवल क्या लिखा वही पता नहीं, इतना भयंकर प्रकोप। खुद को स्टडी करना है, खुद को देखना है मुझे कितनी नींद चाहिए। हट योग नहीं करना है कि बस 2 बजे उठ गए और सारे दिन भर सोते रहो। लोग मधुबन में आते इतना उमंग उत्साह, इतना उमंग उत्साह, 2 बजे उठ जाते और फिर नींद करते रहते योग में। हमारे पास एक डॉक्टर थी तो वो आई, अभी कहीं बाहर है, आई बाबा की कुटिया में बैठी सुबह 2 बजे, 15 मिनट योग किया और फिर नींद चालू हो गई जबरदस्त, और एकदम से आंख खुली 4 बजे तो देखा वो अकेली है कुटिया में और पीछे कुछ लोग बैठे हैं। और फिर डर लगा कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सो रही है। पीछे मुड़ के देखा 5 माताएं सारी सो रही थी, तो एकदम निश्चिंत होके वो भी सोने लगी। ऐसा भयंकर प्रकोप नींद का। मनोरिंद्रा दादी एक बार मेडिटेशन हॉल में क्लास करा रही थी, मुरली क्लास, तो माताएं सामने थी, इतनी नींद आ रही थी, दादी ने कहा सब उठो और पीछे जाके खड़ी हो जाओ, परंतु माताएं ऐसी महारथी थी नींद में कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया। तो यदि हमें नींद आ रही है तो सीरियसली थिंक करना है, क्यों, क्या मेरी नींद कम हो रही है, क्या हो रहा है, अपनी नींद को पूरा करना है और नींद का स्टडी करना है। नींद का लिटरेचर, साहित्य, क्लासेस सब पढ़ो। आरियम स्लीप, नॉन आरियम स्लीप क्या होता है, ये सारा फिलॉसफी ऑफ स्लीप, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, जो चीज में हमारी कमी है उसकी स्टडी करनी है। तो स्लीप अगला, डिजिटल कंट्रोल। डिजिटल कंट्रोल पता है ना, ये उंगलियां कैसी चलती है, फटाफट 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 फटाफट, इतने फास्ट और इतने एक्सपर्ट हो गए हैं मैसेज टाइप करने में कि ऊपर देख के भी टाइप कर सकते हैं कोई कोई, इतनी फास्ट। हम आईसीयू में जो पेशेंट फाइट करता है उसको हम बॉक्सिंग बैंडेज पहनाते हैं, जो लाइन निकाल देता है इधर उधर से, बॉक्सिंग बैंडेज पूरा ऐसा, या छोटे बच्चे भी लाइन निकाल देते हैं ना उनको बॉक्सिंग बैंडेज। कभी कभी हमको ये भी लगता है कि जो लोग इसमें इतना ज्यादा है उनको भी ये लगाना चाहिए कभी कभी, ताकि हाथ ही काम ना करे, इतने वश हो गए उसके, एक मैसेज इधर से एक मैसेज उधर से, इधर से मैसेज भेजा उधर से आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, अज्ञात, एक लंबी प्रतीक्षा। इधर से व्हाट्सएप भेजा पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं, जब तक नहीं आता है तब तक दुख, निराशा, और मन के विरुद्ध अगर आ गया तो और ज्यादा निराशा। मोबाइल, स्क्रीन टाइम, विदेश में कहते हैं स्क्रीन टाइम कितना है हर एक का, स्क्रीन में देखने का टाइम, उसके भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सुबह कहानी सुनाई थी स्वप्न वाली, क्या कर दिया उसके भाई ने, चारों ही टांगे काट दी, फिर अच्छे से नींद आई। विकारों की प्रवेशता, छोटे छोटे बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं, आतंकवादियों के इंटरव्यू लिए गए, उनको पूछा गया बचपन में कौन से गेम अच्छे लगते थे, वीडियो गेम्स, इधर से गाड़ी आई, उधर से गाड़ी आई, इधर एक्सीडेंट, उधर मारा, इधर गिरा। स्टडी है ये साइकोलॉजी में, वीडियो गेम्स कौन से अच्छे लगते थे, मारने वाले, बंदूक वाले, ये सारे गेम्स अच्छे लगते थे। क्या हम कर रहे हैं इसके साथ, बहुत श्रेष्ठ साधन है सेवा का, परंतु विनाश का भी कारण हो सकता है। जब रावण ने देखा कि ये ब्राह्मण लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाते तो उसने चाल चली अपनी, कौन सी, टीवी लाके रखा हर एक के घर में, और जब देखा कि टीवी भी ये लोग नहीं देखते हैं ब्राह्मण, तो उसके ऊपर की सुपर चाल चली, फिर हर एक के जेब में आ गया। अब बचो, कैसे बचते हो? तो कितना हम प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता है। क्लासेस सुनते सुनते ही तुरंत फॉरवर्ड, बहुत अच्छी क्लास है सुनना, तुमने सुनी क्या? वो कहते हैं सेवा, बस फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और जिसके पास फॉरवर्ड वो तीसरे को फॉरवर्ड, इसी में ही समय जा रहा है, सुन कोई नहीं रहा है। हाँ लिखेंगे, बहुत अच्छी है, जरूर सुनना। इतने डूब गए हैं डिजिटल वर्ल्ड में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, क्या ये अंतर्मुखता की साधना है डिजिटल? अगला, इच्छाएं, इच्छाओं पर नियंत्रण। अ रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड, इस वाक्य को याद रखना। संसार में बहुत कुछ है पाने जैसा, परंतु एक धार्मिक चित्त जो होता है वो उच्चाकांक्षा, संसार में पद प्राप्ति करना, ये उसका लक्ष्य नहीं है। उसके पीछे जाओगे तो ये चला जाएगा हाथ से, जो आध्यात्मिक संपदा है। लियो टॉल्स्टॉय ने एक, रूस के लियो टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी है जो हमें बहुत प्रिय है, लिखा है एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत गरीब किसान है, रहता है किसी एक देश में। वहां पर एक सन्यासी उसके पास ठहरने आता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए दूसरे शहर में, वहां पर जमीन बहुत सस्ती है, वहां जाओ तुम। वो कहता है अच्छा। सारा कुछ बेच के वो किसान उस शहर में पहुंचता है, उस गांव में, और वहां पर पूछता है यहां जमीन के भाव क्या है। वहां के लोग उसको कहते हैं यहां जमीन के भाव जितना तुम चलो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, जितनी जमीन तुम कवर करो वो तुम्हारी होगी। वो रात भर सोता नहीं, सुबह उठता है और वहां पर पहुंचता है, सारा गांव प्रतीक्षा कर रहा होता है और वो अपनी दौड़ चालू करता है, क्योंकि जितना वो चलेगा वो सारी जमीन उसकी हो जाएगी। वो चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, प्यास लगती है, सोचता है पानी पीने बैठ जाऊं तो जमीन थोड़ी कम मिलेगी, बाद में तो पीना ही है, बॉटल फेंक देता है। भूख लगती है, सोचता है अभी खाने अगर रुक जाऊं तो जमीन कम हो जाएगी, भोजन फेंक देता है। दोपहर ही हो जाती है, भागता है भागता है, हाँफता है और भागता है और हाँफता है और भागता है, रनिंग एंड पेंटिंग, और फिर सोचता है कि पहुंचना भी तो है वापस, परंतु सामने की जमीन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सोचता है थोड़ा सा भाग लूं और, बहुत उपजाऊ उर्वर जमीन है, और भागता है और सोचता है कि अभी तो वापस चलना ही चाहिए, नहीं तो पहुंचूंगा नहीं, परंतु सामने की जमीन इज मोर फर्टाइल, और थोड़ा भागता है और थोड़ा भागता है, और फिर एक समय आता है सोचता है अब तो चलना ही चाहिए, और वापस आता है और फिर तेजी से भागता है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले उसे पहुंचना भी है, और फिर दिखाई देने लगते हैं सारे गांव वाले खड़े हुए, परंतु इधर सूर्यास्त हो रहा है, वो और तेजी से भागता है तेजी से भागता है, और जब बस थोड़ा ही अंतर होता है धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया, हम कहां भाग रहे हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे और भाग रहे, अभी वापस चलना है, भगवान लेने आया है, परंतु सामने की जमीन बहुत अच्छी है, और थोड़ा भागना है और थोड़ा भागना है। स्टॉप द वाइल्ड गूज चेज, इच्छा है, लौकिक इच्छा है, सांसारिक इच्छा है, ये तो जन्म जन्म थी ही, अब इन्हें रोकना है। अगला है संस्कार, संस्कारों का नियंत्रण। सबसे पहले तो ये जानना है मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से संस्कार है, दुख देने के संस्कार, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के संस्कार, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स के संस्कार, स्वयं को नीचे देखा समझना, गिल्ट कॉम्प्लेक्स के संस्कार, अपराध भाव, जीवन में बहुत बड़ा पाप हुआ है परंतु उस पाप के भाव से अभी तक चित्त मुक्त नहीं हुआ है, सुबह उठते हैं और वही संकल्प पाप हुआ है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, पश्चाताप करने में भी समय वेस्ट नहीं करो। एक बार कर लिया परंतु वो गहरा प्रायश्चित्त हो, अभी भी वरदान प्रश्न था मुरली में, वो गहरा प्रायश्चित्त हो और उससे मुक्त हो जाओ। गिल्ट कॉम्प्लेक्स के संस्कार, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, हर चीज में स्वयं को दोषी ठहराना, जो भी हुआ मैं दोषी हूं। एक होता है ब्लेम गेम, दूसरों को दोषी ठहराना, उससे भी खतरनाक है स्वयं को दोषी ठहराना। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंसिस्टिंग नेचर, जिद करना, सिद्ध करना, रूठना, रोना, ओवर सेंसिटिव नेचर, किसी ने कुछ कह दिया मूड ऑफ। एक अध्यात्म का ये जो पथ है इसमें कठोर बनना होता है बहुत। द पाथ इज नैरो, जीसस क्राइस्ट ने कहा है, ये पकदंडी है, एकांगी, अकेले को चलना है, यहां पर कमजोर बनकर नहीं चलेगा, सब कुछ सहन करना है। यहां तो कांटों का जंगल है, सुबह से लेके शाम तक कम से कम 10 कांटे तो रोज चुभने हैं। और ये ब्राह्मण परिवार यदि एग्जामिनेशन हॉल है तो एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, इसको भी नहीं भूलना है। ब्राह्मण आत्माओं के पेपर बाहर वालों से नहीं आएंगे, कहां से आएंगे? यहीं से, ब्राह्मणों का हिसाब किताब, अव्यक्त महावाक्य ब्राह्मणों द्वारा ही चुप्त होना है। स्वयं के संस्कारों को स्टडी करना है, उनको वश में लाना है और उनको कार्य में लगाना है, फिर उस प्रोग्राम को, उस प्लानिंग को, तो वो जिन प्रकट होगा रूलिंग पावर का। अगला है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, संकल्प, भाव और भावनाएं, ये उससे भी अधिक सूक्ष्म है। अपने विचारों को, अपने संकल्प को वश में करना, और सुबह जैसे कहा वो वश में तभी हो सकते हैं जब श्रेष्ठ हो, महान हो। यदि वो नीच है, छोटे है, सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो है विकारों के, संकल्पों की, और उसमें भी सबसे अधिक स्पीड है काम विकार की, आवेश है, ऐसा आवेश, ऐसा उद्वेग, ऐसी एक्साइटमेंट कि व्यक्ति कितना भी ज्ञान योग करता है परंतु जैसे ही विकारों का संकल्प आता है सारे ज्ञान योग के गांव जो बसाए थे उस सुनामी में कहां ढह जाते हैं पता नहीं चलता। वेस्ट, उससे भी ज्यादा, उससे थोड़ी कम है निगेटिव की, उससे थोड़ी कम है वेस्ट की। ये सारे संकल्प है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और सबसे कम स्पीड है स्वमान के संकल्प की, परमात्मा प्रेम के संकल्प की, महान संकल्प की। इसके लिए संकल्पों का खजाना जमा करना है, हर एक मुरली से कुछ वाक्य निकाल लेने हैं और जिनको याद करके रखना है ताकि परिस्थितियों में वो शक्ति रूप धारण करे ऐसे महावाक्य। क्योंकि जैसे कहा हीरा है, खजाने हैं, एक एक महावाक्य बड़ी बड़ी आपदाओं से हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा कवच है ब्राह्मणों का। तो संकल्प, भाव और भावनाएं कितने हुए? 9। अगला है परचेसिंग, परचेसिंग वस्तुएं खरीदना, संग्रह करना, जमा करना, इस पर कंट्रोल। इतनी वस्तुएं जमा करने की आदत है कि जो हमारे कभी काम नहीं आएगी फिर भी जमा करके रखिए, फिर भी खरीद के रखिए। सोक्रेटिस के जीवन में उल्लेख है, सुकरात यूनान का दार्शनिक, कि वो रोज सुबह सुबह मार्केट जाता था और पूरा मार्केट घूम के आता था। लोग उसको कहते थे तुम हो फकीर, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम मार्केट किस लिए जाते हो, खरीदते तो कुछ नहीं हो। उसने कहा मैं ये देखने जाता हूं कि संसार में कितनी सारी वस्तु है कि जिनके बिना मैं इतना सुखी हूं, ये देखने के लिए। और हम जाते हैं कुछ लेना नहीं है परंतु गए और पूरी दो तीन थैली भर के लेके आए, देखकर संकल्प आता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। वस्तुओं का संग्रह करना, चाहे मांगना चाहे खरीदना चाहे कहीं से लेना। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, आंखों सहित अव्यक्त महावाक्य, सब कुछ गारत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। नियंत्रण करना है स्वयं को, संस्कारों को, भाव को, भावनाओं को, वृत्तियों को, दृष्टि को, कर्मेंद्रियों को, जहां जहां वो भाग रही है उनको रोकना है, और बहुत समझा के रोकना है। डायरेक्ट अगर कह दो तो वही वही जाएगी, और करना काम तब तक है जब तक सबकॉन्शियस माइंड में ये चला ना जाए, फिर वो अपने आप कार्य करने लगेगा। इन सारी आदतों से, इन सारी वृत्तियों से मुक्त होने के लिए कुछ नई आदतें, नए संस्कार धारण करने पड़ेंगे, और उन संस्कारों को सबकॉन्शियस माइंड में जाते हुए देखना है। रोज अपना एक विजन बनाए, विजुअलाइज करना कि मैं क्या बनना चाहता हूं। एक ऐसा व्यक्ति कि जो नियमित अमृत वेला करे, जो संपूर्ण मुरली का अध्ययन करे, संपूर्ण ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य संपूर्ण अखंडित, किसी भी कारण ब्रह्मचर्य जिसका खंडन ना हो, ऐसा तेजस्वी तपस्वी जीवन मुझे अपना बनाना है, ऐसा एक विजन, उस विजन में कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन रोज करना है, ताकि ये जो पुराना है, ये जो नीचे का है, ये सब नष्ट हो जाएगा। जैसे इंक की बोतल होती है, अगर वो इंक खत्म हो गई है और हमें उसे धोना है, तो हम क्या करते हैं, नल के नीचे रखते हैं, और जैसे ही नल चालू होता है उसमें से पहले गंदा पानी आता है इंक वाला, परंतु डरना नहीं है। जैसे ही ये करना चालू करे, ये क्या निकलना चालू हो गया, जो भी इस पुरुषार्थ को करेगा बहुत सारा अंदर से बाहर आएगा, परंतु पानी जारी रखना, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, श्रेष्ठ जीवन, वो धारा बहती रहे तो एक दिन शुद्ध पानी आएगा। तो समय पूरा हो रहा है, इस चिराग को घिसना अर्थात कार्य में लगाना, तो वो जिन प्रकट होगा शासन करने का, हम स्वयं पर, विश्व पर शासन कर सकेंगे। ओम शांति।
संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।